स्पेन तथा स्कैंडिनेवियाई देशों में पुनर्जागरण। स्कैंडिनेवियन देश बहुत देर तक, यहाँ तक कि 1520 वाले दशक तक भी पुनर्जागरण के ज्वार से एकदम अप्रभावित थे। यह स्थिति जर्मनी के हालात के एकदम प्रतिकूल नजर आती है, जहाँ 15वीं शताब्दी के अंत तक मानवतावादी मूल्यों का पूरी तरह से विकास हो गया था। नॉर्वे और आइसलैंड के संदर्भ में तो यह विलंब समझ में भी आता है, पर स्वीडन और डेनमार्क के बारे में इस विलंब की व्याख्या कर पाना कठिन दिखता है, क्योंकि इन दोनों का शेष यूरोप के साथ संबंध और व्यापक आदान प्रदान बहुत पहले ही कायम हो गया था। स्वीडन में उपासला में पहला विश्वविद्यालय तक 1477 में कायम हो पाया था। विश्वविद्यालय में कला और धर्म दर्शन की पढ़ाई मोटे तौर पर मध्यकालीन ढर्रे पर ही होती थी। इससे अगले साल 1478 में कोपेनहेगन का विश्वविद्यालय कायम हुआ, और वह भी कोई प्रगतिशील केंद्र नहीं था। वास्तव में स्कैंडिनेवियाई देशों को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक सुधार आंदोलन कोई सकारात्मक और व्यापक पैमाने की बौद्धिक दिलचस्पियां उत्पन्न कर सके। स्पेन में मानवतावादी प्रभाव खुद ब खुद फैले तथा फर्डिनंड और इसाबेला के दरबार में अनुभव किए गए, साथ ही सालेमांका में भी, जहाँ पाम्पेनियो मांटोवानो जैसे इतालवी विद्वानों ने अपने भाषणों के जरिए लोकमत को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। स्पेन में मानवतावाद के प्रसार में आरंभिक इतालवी योगदान वास्तव में बड़ा उल्लेखनीय रहा। दो अन्य इतालवी विद्वान ल्यूसियो मारिनेओ सिकोलो, जो 1448 में स्पेन पहुंचे, और पिन्नो मार्टिर डी आगिरा, जो तकरीबन 1487 में स्पेन पहुँचे, काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो क्रमशः दी हिस्पेनियन लोडिक्सस 1495 में प्रकाशित और डिकेट्स दी ओरवे नो प्रकाशन वर्ष अज्ञात नामक महान ऐतिहासिक कृतियों के लेखक है। एक पुर्तगाली एरियस बारबोस ग्रीक भाषा का लोक प्रशिक्षक था। कुछ अरसे बाद तो स्पेन में पुनर्जागरण की गतिविधियां एकदम ही तीव्र हो गई। तूफानी धार्मिक बहसों के बाद एलकाला दी हेनारेस में 1508 में टोलेडो के आर्क बिशप कार्डिनल फ्रांसिस्को जिमेनेर दी सिस्नेरोस 1437-1517 द्वारा एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। हालांकि यह विश्वविद्यालय किसी क्रांतिकारी उद्देश्य से कायम नहीं किया गया था, पर फिर भी यह शीघ्र ही स्पेन में ईसाई मानवतावाद का एक केंद्र बन गया। इसकी असाधारण उपलब्धियों में से एक थी ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के संस्करण का 1514 में प्रकाशन, या वासले से इरास्मस के ठीक ऐसे ही संस्करण के प्रकाशन से करीब 2 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था। स्पेन में गोथिक कला शैलियों का बहिष्कार 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में ही आरंभ हुआ। यह काम कलाकारों की एक बिल्कुल नई पीढ़ी आदोनेज मातुका वेरुगुएटे और दोही सिलो ने किया। ये सभी इटली में प्रशिक्षित हुए थे तथा इन सभी के ऊपर पुनर्जागरण के परवर्ती काल के स्थापित फैशन का गहरा असर था। दिलचस्प बात यह है कि महारानी इसाबेला का 200 से अधिक चित्रों का संग्रह फ्लेमिश और डच कलाकारों के प्रति वांडेर वेडेन मिमलिंग बोस के प्रति जबरदस्त रुचि प्रदर्शित करता है। हालांकि उसमें एक चित्र बोतिसेली का भी है। इस प्रकार इटली के प्रेरणा से कला के नए से नए स्कूल लगातार कायम होते गए, लेकिन वे अपनी प्रकृति से प्रांतीय किस्म के ही रहे। इसके अलावा इतालवी प्रभाव कहीं भी स्थापित फ्लेमिश प्रभाव को पीछे नहीं छोड़ पाया। चार्ल्स पंचम ने संरक्षण प्रदान किया था और इस तरह राज दरबारी संरक्षण की परंपरा को बढ़ावा दिया था। स्पेनी कला का ऐसा ही एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति जिसका काम यहूदियों और मूरों मुसलमानों को ईसा कुमारी मेरी अथवा किसी भी संत का चित्र बनाने से रोकना था। 15वीं-16वीं शताब्दियों की स्पेनी कला वस्तुतः बहुत छोटी लगती है और शायद जरा भी महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसमें एक विशेष गुण दिखाई देता है। इसाबेला के तहत नई नई हासिल संपदा और सत्ता के चलते एक खास तरह की संपन्न नक्काशी के प्रति झुकाव और रुचि दिखाई देती है। इस नई बात ने नई दुनिया में स्पेन की मौजूदगी को सर्वाधिक प्रभावित किया। संपूर्ण पुनर्जागरण आंदोलन की एक महान हस्ती इरास्मस 1469-1536 था, जो कि जन्म से डच था लेकिन यूरोप के लगभग हर देश के बुद्धिजीवी क्षेत्र में छाया हुआ था। मसीही मानवतावाद का सबसे बड़ा प्रचारक होने के साथ साथ वह यूरोपीय पुनर्जागरण की महानतम विभूतियों में से था। अध्ययन की इच्छा उसे फ्रांस, इंग्लैंड तथा इटली में खींच ले गई। इन सभी जगहों पर इरास्मस ने अध्ययन किया और सीधी साधी नैतिक सच्चाई के उपदेशों को ग्रहण किया। एक मायने में उनकी रचनाओं में मौलिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इसी घिसी पीटे मार्ग पर चले कि ईसाई धर्म को प्रत्येक नर नारी के लिए सार्थक कैसे बनाया जाए। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह उन चंद लोगों में से एक था जो अपने दौरे में केवल अपने लेखन के बल पर ही अपनी आजीविका अर्जित कर सके थे। वास्तव में इरास्मस को सर्वाधिक सफलता उनके मौलिक लेखन में नहीं बल्कि ईसाई मूल ग्रंथों के संपादन के कार्य में मिली थी। हालांकि उनमें एक तरह के आलोचनात्मक रुझान के बड़ी तीव्रता से दर्शन होते हैं किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक, लेकिन फिर भी इरास्मस ने उभरती हुई पूंजीवादी आत्मचेतना के साथ परंपरागत ईसाई अवधारणाओं के संबंध जोड़ने की जरूरत महसूस की। वस्तुतः इरास्मस ने ही ज़्यादातर ईसाई पंडित की आलोचना की थी, जिसमें ज्ञान और करुणा को अनावश्यक रूप में घुला मिला दिया गया था। इसका प्रतिकार इरास्मस ने अपने ढंग से किया। इसके लिए उन्होंने अपनी कृति हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन थॉट एंड मेथड अप टू थियोलॉजी लिखी। उनकी व्यंग कृतियों प्रेज ऑफ फॉली जिसके प्रकाशन के बाद से 600 से अधिक संस्करण निकल चुके हैं, तथा फेलो लोक्वीज जिसके प्रकाशन के बाद से 300 संस्करण निकल चुके हैं को अकल्पनीय लोकप्रियता मिली। यह एक ऐसा तथ्य है जो एक सुधारवादी के रूप में उनकी व्यवहार कुशलता का परिचायक है। वह अतिरिक्त क्रांतिकारी हुए बिना ही सुधारवादी थे, इसलिए इस बात में कोई तारतम्य नहीं प्रतीत होता कि एक ओर जब इरास्मस को उसके समय के मानवतावादियों के साथ जोड़ा जाता है और दूसरी ओर पुरोहितवाद के अंधविश्वासों को कायम रखने वालों के साथ भी जोड़ दिया जाता है। वस्तुतः क्लासिक लेखकों के प्रति उनका रुख तक कई दृष्टियों से मध्यकालीन था। इरास्मस को क्लासिकों के नैतिक सिद्धांत पुरातन ज्ञान और दिव्य वाक्य लगते थे, एक महान सभ्यता का सच्चा अनुभव नहीं। प्रोटेस्टेंट सुधार का शुरू होना उनके लिए एक व्यक्तिगत आघात था। इन सीमाओं के बावजूद इरास्मस एक सच्चे और प्रतिभाशाली विद्वान थे तथा वह उत्तरी पुनर्जागरण का सही प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें धर्मांडंबर मसीही धर्मनिष्ठा का समन्वय दिखाई देता है। वास्तव में यह कहना गलत नहीं होगा कि इरास्मस में इन दोनों परंपराओं का सर्वोत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। उनकी प्रभावपूर्ण ढंग से बोलने की शैली, आशावादी दृष्टि और यह विश्वास कि साहित्य स्वस्थ मन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है, उन्हें निश्चित रूप से दक्षिण से विरासत में मिली है। उनकी सहज धर्मनिष्ठा, ईसाई धर्म में व्यक्त करुणा की भावना और कैथोलिक धर्म में पुनः विश्वास जगाने की दिशा में उनके भारी प्रयत्नों के पीछे उत्तर की प्रेरणा है।